पहला सामुएल बाब 30। तीसरे दिन जब दाऊद सिकलाज पहुंचा तो देखा कि शहर का सत्यानाश हो गया है। उनकी गैर मौजूदगी में अमालिकियों ने दश्त नजब में आकर सिकलाज पर भी हमला किया था। शहर को जलाकर वो तमाम बाशिंदों को छोटों से लेकर बड़ों तक अपने साथ ले गए थे, लेकिन कोई हलाक नहीं हुआ था, बल्कि वो सबको अपने साथ ले गए थे। चनांचे जब दाऊद और उसके आदमी वापस आए तो देखा कि शहर भस्म हो गया है और तमाम बाल बच्चे छिन गए हैं। वो फूट फूट कर रोने लगे, इतने रोए कि आखिरकार रोने की सकत ही न रही। दाऊद की दो बीवियों अखिनोइम यरजाइली और अबीजेल कर्मल को भी असीर कर लिया गया था। दाऊद की जान बड़े खतरे में आ गई, क्योंकि उसके मर्द गम के मारे आपस में उसे संसार करने की बातें करने लगे, क्योंकि बेटे बेटियों के छिन जाने के बाद सब सख्त रंजीदा थे। लेकिन दाऊद ने रब अपने खुदा में पनाह लेकर तकवियत पाई। उसने अब्यातिर बिन अखी मलिक को हुक्म दिया, कुरा डालने के लिए इमाम का बाला पोश ले आए। जब इमाम बाला पोश ले आया तो दाऊद ने रब से दरियाफ्त किया, क्या मैं लुटेरों का ताकुब करूं? क्या मैं उनको जालूं? रब ने जवाब दिया, उनका ताकुब करो, तू न सिर्फ उन्हें जा लेगा बल्कि अपने लोगों को बचा भी लेगा। तब दाऊद अपने 600 मर्दों के साथ रवाना हुआ। चलते चलते वो बसूर नदी के पास पहुंच गए। 200 अफराद इतने निढाल हो गए थे कि वो वहीं रुक गए, बाकी 400 मर्द नदी को पार करके आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें खुले मैदान में एक मिस्री आदमी मिला और उसे दाऊद के पास लाकर कुछ पानी पिलाया और कुछ रोटी, अंजीर की टिक्की का टुकड़ा और किशमिश की दो टिक्कियां खिलाई। तब उसकी जान में जान आ गई। उसे 3 दिन और रात से न खाना न पानी मिला था। दाऊद ने पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है और तुम कहां के हो? उसने जवाब दिया, मैं मिस्री गुलाम हूं और एक अमालिकी मेरा मालिक है। जब मैं सफर के दौरान बीमार हो गया तो उसने मुझे यहां छोड़ दिया। अब मैं 3 दिन से यहां पड़ा हूं। पहले हमने करीतियों यानी फिलिस्तियों के जनूबी इलाके और फिर यहूदा के इलाके पर हमला किया था, खासकर यहूदा के जनूबी हिस्से पर जहां कालिब की औलाद आबाद है। शहर सिकलाज को हमने भस्म कर दिया था। दाऊद ने सवाल किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये लुटेरे किस तरफ गए हैं? मिस्री ने जवाब दिया, पहले अल्लाह की कसम खाकर वादा करें कि आप मुझे हलाक न करेंगे न मेरे मालिक के हवाले करेंगे, फिर मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। चुनांचे वो दाऊद को अमालिकी लुटेरों के पास ले गया। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अमालिकी इधर उधर बिखरे हुए बड़ा जश्न मना रहे हैं। वो हर तरफ खाना खाते और मैं पीते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जो माल उन्होंने फिलिस्तीनियों और यहूदा के इलाके से लूट लिया था वो बहुत ज्यादा था। सुबह सवेरे जब अभी थोड़ी रोशनी थी, दाऊद ने उन पर हमला किया। लड़ते लड़ते अगले दिन की शाम हो गई। दुश्मन हार गया और सब के सब हलाक हुए। सिर्फ 400 जवान बच गए जो ऊंटों पर सवार होकर फरार हो गए। दाऊद ने सब कुछ छुड़ा लिया जो अमालिकियों ने लूट लिया था। उसकी दो बीवियां भी सही सलामत मिल गईं। न बच्चा, न बुजुर्ग, न बेटा, न बेटी, न माल या कोई और लूटी हुई चीज रही जो दाऊद वापस न लाया। अमालिकियों के गाय, बैल और भेड़ बकरियां दाऊद का हिस्सा बन गईं और उसके लोगों ने उन्हें अपने रेवड़ों के आगे आगे हाँक कर कहा, ये लूटे हुए माल में से दाऊद का हिस्सा है। जब दाऊद अपने आदमियों के साथ वापस आ रहा था तो जो 200 आदमी निढाल होने के बाद बसोर नदी से आगे न जा सके वो भी उनसे आ मिले। داؤد نے سلام کر کے ان کا حال پوچھا، لیکن باقی آدمیوں میں کچھ شرارتی لوگ بڑبڑانے لگے، یہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آگے نہ نکلے، اس لیے انہیں لوٹے ہوئے مال کا حصہ پانے کا حق نہیں، بس وہ اپنے بال بچوں کو لے کر چلے جائیں۔ لیکن داؤد نے انکار کیا، نہیں میرے بھائیوں، ایسا مت کرنا، یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے، اسی نے ہمیں محفوظ رکھ کر حملہ آور لٹیروں پر فتح بخشی، تو پھر ہم آپ کی بات کس طرح مانیں؟ جو پیچھے رہ کر سامان کی حفاظت کر رہا تھا اسے بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اسے جو دشمن سے لڑنے گیا تھا، ہم یہ سب کچھ برابر برابر تقسیم کریں گے۔ اس وقت سے یہ اصول بن گیا، داؤد نے اسے اسرائیلی قانون کا حصہ بنا دیا جو آج تک جاری ہے۔ سکلاج واپس پہنچنے پر داؤد نے لوٹے ہوئے سامان کا ایک حصہ یہودا کے بزرگوں کے پاس بھیج دیا جو اس کے دوست تھے، ساتھ ساتھ اس نے پیغام بھیجا، آپ کے لیے یہ تحفہ رب کے دشمنوں سے لوٹ لیا گیا ہے، یہ تحفے اس نے ذیل کے شہروں میں بھیج دیے، بیتیل، رامات، نجب، یتیر، ارغیر، صفموت، استمو، رکل، خرما، بورسان، اتاق اور حبرون، اس کے علاوہ اس نے تحفے یرحمیلیوں، قینیوں اور باقی ان تمام شہروں کو بھیج دیے جن میں وہ کبھی ٹھہرا تھا۔